ओम शांति। सभी को भट्टी में आनंद आ रहा है या थकान बैठने की आ रहा है? आनंद जीवन में सबसे सुंदर बात होती है कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा हुआ है। लक्ष्मीनारायण बनना नहीं, वो तो कल्पनाओं की बात रह गई है, उसे छोड़ो। हमने अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा हुआ है, चिंतन करेंगे सभी। किसी का लक्ष्य हो सकता है एक अच्छा योगी बनना, किसी का सेवाओं में लक्ष्य होता अपनी सेवाओं से सबको संतुष्ट करना, किसी का लक्ष्य होता है समर्पित हुए हैं तो एक एग्जाम्पलरी लाइफ, आदर्श लाइफ बना लेना। हमारे पास लाख लोग आ जाते हैं कई लाख साल में, वो हमें देखकर बहुत सीखें। किसी का लक्ष्य होता है लाइफ को बहुत इजी कर देना, इजी हैप्पी लाइफ। तो कुछ बड़े लक्ष्य भी हैं। किसी का लक्ष्य पूरा सेवा भाव का होता है, आप में से भी कईयों को मैं जानता हूं बहुत सेवा भावी, दूसरों को सुख पहुंचाना है हर हाल में। और जिस बड़े लक्ष्य की बात मैं कर रहा हूं वो है कि आने वाला जो समय है उसमें हम मुख्य पार्ट प्ले करें। सीन बदल रहे हैं संगम के, अब तो सबको स्पष्ट हो गया। और मुझे तो पहले से ही आभास था कि 2020 से और 30 का जो पीरियड है ये संपूर्ण रूप से विश्व परिवर्तन का है। इसमें भिन्न भिन्न सीन हमारे सामने आएंगे। ये तो किसी को नहीं पता था कि कोरोना भी आएगा। कल कोई बता रहा था जितनी सारी दुनिया में महामारी है उतनी कोरोना के वायरस की यदि तोल की जाए तो 2 ग्राम है बस। तो जो वस्तु जितनी सूक्ष्म है उतनी ही पावरफुल है। हम भी अपनी सूक्ष्म स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे। और सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि आने वाले समय में हम संसार के काम आ सकें। बहुत आनंद होता है जब हम किसी के काम आ जाते हैं, जब हम किसी के दुख हरने वाले बन जाते हैं। मैं सवेरे का अनुभव सुनाऊं, मुझे आना तो जल्दी था यहाँ पर, मैं सोचा थोड़ा फोन खोल लेता हूँ। मुझे रहता है किसी का समस्या हो बेचारों को हल मिल जाए। कनाडा से एक फोन आया, घटना बताई अपनी बहन ने, डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मुझे भी लोग डॉक्टर समझने लगे, डॉक्टर साहब आजकल मैं हूं नहीं डॉक्टर पर समझने लगे हैं। क्या हुआ? बड़ी सूक्ष्म गति कर्मों की काम कर रही है। मैं आपको केवल ये एक सुना रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है संसार में। कहा गर्भ में 6 मास का बच्चा है, 1 मास से मुझे गहरा डिप्रेशन होता जा रहा है, न नींद आती है, बेचैनी रहने लगी है, मन बिल्कुल शांत नहीं है। मैंने पूछा ज्ञान लिया है क्या? पति भी साथ में बात कर रहा था। कहा भी लेना शुरू किया है हम लोगों ने यूट्यूब व्हाट्सएप इस सबसे जो चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया, तो किसी की समझ में नहीं आया उनको अचानक क्या हो गया। 1 मास से बिल्कुल अच्छा जीवन, खुशहाली से भरा हुआ जीवन। तो मेरी एक राज समझ में आया कि ये जो आत्मा 1 मास से गर्भ में आई है ना, 5 मास में लगभग आ जाती है ना, ये इनकी पूर्व जन्म की बड़ी शत्रु है, बदला लेने आ गई। मैंने उनसे पूछा, भाई बात तो थोड़ी खराब है, कहो तो बता दो, फिर भी मुझे सोच समझ के बतानी थी, थोड़े अच्छे शब्दों में बतानी थी ताकि हर्ट न हो जाए एकदम। फिर मैंने उन्हें बताया, इससे क्षमा याचना करो, इसको संकल्प दो तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, पालना देंगे, पास्ट को भूल जाओ। कुछ विधि हम लिखने की बताते हैं, वो उसे सिखाई, लेकिन उसे शांति नहीं हो रही थी। मैं ठीक हो जाऊंगी क्या, मेरे साथ तो बहुत खराब हो रहा है, क्या हो गया है मुझे अचानक ये। दोनों समझो उनके पति पत्नी ग्रस्त जीवन में, और बच्चा भी 13 साल के बाद आ रहा है, कितनी इंतजार की और उसमें भी दुख भरा जीवन साथ में, तो देखो संसार का क्या हाल होता जा रहा है। हम सभी संसार के काम आ जाएं, बाबा से वरदान लेना है सभी को। मैं पहले आप सबको कुछ याद दिला देना चाहता हूं, बहुतों को तो याद रहता है, बहुतों को याद नहीं रहता। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है वो अपनी शक्तियों को पहचाने, वो अपने इस बलिदान के महत्व को समझें, संसार की सब इच्छाएं छोड़कर सफेद वस्त्र धारण कर लिए। आप में से कई लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, संसार की सभी इच्छाएं न धन चाहिए न मान चाहिए सब छोड़ दिया। हमारे यहाँ आंसर और में वो स्पीच कंपटीशन रखते हैं, तो मैं मुझे बैठाया भाई कुछ बोलना, आखिर में मैं देखा 3 लोग जो स्पीच कंपटीशन में बैठे थे हमारे साथ रहते हैं, हमें पता नहीं था, तीनों ने भी टेक की हुई है, न हमने उनसे कभी पूछा न उन्होंने जिक्र किया। मैंने कहा आप लोग किचन में भी काम कर रहे हो बीटेक करके, तो कितना बड़ा त्याग और बलिदान। अपने त्याग और बलिदान को खुद वैल्यू दें, सब कुछ छोड़ा है तो सब कुछ पाकर इस संसार से जाएंगे, इस संसार को देते हुए जाएंगे, लेते हुए नहीं देते हुए जाएंगे। अगर ये संसार आगे चले तो युगों तक हमें याद करे, कोई ऐसे फरिश्ते भी आए थे जो संसार को ऋणी बना कर गए। इसलिए बहुत अच्छा अपने से चिंतन करें, बाबा ने सुंदर समय दिया है। कोरोना संसार के लिए तो महामारी है, पर हम सब के लिए एक वरदान। खुद चिंतन करें मुझे क्या पाना है और आगे चलकर मुझे क्या करना है संसार के लिए, ऐसे ही नहीं सेवा करते हुए चले गए। ठीक है भाई किचन में है तो भोजन बना रहे खिला रहे, जिस डिपार्टमेंट में है ठीक है सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, वो तो आप सब जानते हैं, परंतु हम कुछ महान कार्य करके संसार से जाएंगे। मुझे कानों में बाबा का एक महावाक्य बहुत बार गूंजने लगता है, वो महावाक्य क्योंकि रिपीट नहीं हुआ इसलिए बहुतों को उसका पता नहीं है, वो केवल एक बार आया है व्यक्त मुरली में। अब बाबा कुछ चीजें किसी विशेष व्यक्ति को सामने देखकर बोलते हैं जो सबके लिए नहीं होती, वो ये था कि जब तक तुमने अपने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। एक और सबको बाबा धुन देता है घर चलना है, दूसरा कुछ आत्माओं को कहता है जो तुम्हारे महान कर्तव्य हैं वो पूरे करके जाने हैं, ऐसे ही नहीं जाना है। तो सभी सोचेंगे हमारे महान कर्तव्य कौन से हैं, सारा संसार हम सब की ओर देख रहा है, मैं छोटी सी एक घटना सुनाऊं सच्ची। 4-5 साल पहले हम दिल्ली में एक जगह गए थे, तो एक साइकेट्रिक डॉक्टर प्रोफेसर है, वो क्लास में आती है, यहाँ भी आती है। मुझे कहा हमारा जो डायरेक्टर है एंटी ब्रह्मा कुमारीज है, उससे मिल लो। मुझे भी हुआ चलो, कहाँ है, मेंटल हॉस्पिटल है यमुना के उस तरफ। मैंने कहा चलो पहली बार मेंटल हॉस्पिटल भी देखाए, कभी देखा तो नहीं है। बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल अपने शांतिवन जितना। डायरेक्टर तो हमारी ओर देखे भी नहीं। हमने बाबा को कहा कुछ तो कर दो, अब इसके पास आए हैं हम। और बाबा ने चमत्कार किया, एक मिनट में वो कन्विंस हुआ और एंटी से हमारा फ्रेंड बन गया। हम 8 लोग थे। कहा चलो मैं अपना हॉस्पिटल आपको दिखाता हूँ, खुद चला हमें लेके। एक हॉल की कहानी सुनाता हूँ। वो हॉल इससे आधा हॉल था, जिसमें ऐसे पेशेंट थे, वो वहीं हमें ले गया जिनका संसार में कोई नहीं है। परिवार वाले छोड़ गए, कोई उन्हें देखने मिलने नहीं आता, वो भी भूल गए हैं कि हमारा कोई है संसार में। मेंटल स्टेट उनकी बहुत डाउन है। हमारे साथ जो एक बहन थी उसका ध्यान गया कि सबके सिर के पीछे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से हैं, जैसा है सोफा इतने इतने, तो मूर्तियां रखी हैं गणेश की, हनुमान की, दुर्गा की, काली की, विष्णु की, श्री कृष्ण की, राम की। तो उसने पूछा डायरेक्टर से, ये सब क्या रखा इन्होंने, आप तो कहते हैं ये सब कुछ भूले हुए हैं, इनको ब्रेन भी, सचमुच ब्रेन भी जैसे काम नहीं कर रहा था। तो कहा एक आश्चर्यजनक बात है कि जब सब ये लोग सवेरे उठते हैं तो ये इन मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, बाकी क्या करते हैं वो तो किसी को पता नहीं। और ये बात सुन के हम आठों के आठों ऐसे अंतर्मुखी हुए। हमने डायरेक्टर को कहा बस अब हम चलते हैं। हम सोचते ही आए कि जिनका संसार में कोई नहीं है वो किसकी ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं। कौन है पदम वो सर? वो हम हैं। क्या हमें अपने कर्तव्यों का एहसास है कि जहां संसार का कोई सहारा नहीं रहता वहां लोग हमारी ओर देखते हैं। अब मुझे तो पिछले 5 सालों में इसके खूब अनुभव हो गए हैं, जहां मेडिकली लोग फेल, डॉक्टर्स फेल, कोई कुछ नहीं कर रहा, आते हैं हमारे पास, भाई क्या करें अब। और हमने देखा बाबा की हम छोटी बात सिखाते हैं और वो ठीक होते हैं। तो ये बाबा का चमत्कार, उसका जादू काम करता है, लेकिन करेगा उसके लिए, उसके द्वारा जो अपने को योग्य बनाएंगे। हम अपने को योग्य बनाएंगे तो बाबा हमें अपनी महान सेवाओं में भिन्न भिन्न रूप से यूज करेगा। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, हमने बहुत बड़ा बलिदान किया है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, समर्पणता नहीं, बलिदान। तो हम संसार को क्या क्या देंगे। कोरोना ने हमें पहला सुंदर अनुभव करा दिया है, लोग भयभीत, चिंतित। बड़ी चीज, किसी का कोई मर जाए तो उसको देख नहीं सकते, हॉस्पिटल में चले गए तो उनसे मिल नहीं सकते हैं, डेड बॉडीज को कहां फेंक रहे हैं कुछ पता नहीं है। आप सबने देखा होगा कर्नाटक में 8 डेड बॉडीज को ऐसे फेंक रहे थे और ऊपर मिट्टी डाल दी, चारों ओर आवाज हो गई है उसकी। ये आत्माएं भटक रही हैं, ये भटकती आत्माएं अनेकों को कष्ट दे रही हैं। अब ये बढ़ गया है संसार में, इसलिए हम सभी ऐसा करेंगे, इन आत्माओं को भी मुक्ति दें। याद होगा आपको पिछले संडे ही बाबा ने कहा था वातावरण भी बदलना है, प्रकृति को बदलना है, तो भूत प्रेतों को भी तो घर का ठिकाना दिखाना है ना, वो भी हमारा ही काम है। मैं सोच रहा था, परसों रात को देखा मैंने, मैं टीवी कम देख पाता हूँ, पर जरा सा खोला तो ये सीन आ रहा था। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, काले काले से क्या डाल रही है उठा उठा के। फिर वो कमेंटेटर बोल रहा था डेड बॉडी है। तो मैं सोचा ये आत्माएं यहाँ सूक्ष्म शरीर में खड़ी रहकर ये सब देख रही होंगी, उनके मन में कितना गुस्सा होगा, कितनी अतृप्तता होगी, कितनी बदले की भावना होगी, वो तूफान करेंगी जहां भी जाएंगी। हमें इन सब को भी मदद करनी है, इसलिए लक्ष्य बना लें कुछ बहुत अच्छा अपने जीवन का। क्योंकि अगर कोई भी महान कार्य हमें करना है तो उसकी तैयारी तो करनी ही होगी। अगर मुझे सबके दुख हरने हैं तो मुझे दुख हरने की शक्ति धारण करनी होगी। यदि मुझे दूसरों के विघ्न नष्ट करने हैं तो मुझे लंबा काल स्वयं को निर्विघ्न रखना होगा। ऐसा भी समय आएगा जब हमारे बोल लोगों को राहत देंगे। मैं सबसे पहली और छोटी बात कह रहा हूं आपको, बोल राहत देंगे, लेकिन किसके? लोग ये कहेंगे हमें दृष्टि दे दो। सुना है आप लोग भगवान के साथ रहे हो, हमें दृष्टि दे दो, हमारा सिर तो फटा जा रहा है, हमें शांत करो। ये सीन हमारे सामने आने वाले हैं, आने लगे हैं सेंटरों में। तो बहुत परेशानियों और बेचैनियों से गुजरते हुए लोग सेंटर में पहुंचते हैं। आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हम अपने को तैयार करें। और मैं इस स्वचिंतन की बात आपको रिपीट कर रहा हूं, लक्ष्य अपना नोट करें, मुझे ये बनना है, ये महान कार्य करना है, और ये महान कार्य करना है तो उसकी ये तैयारी करनी है, ये प्लानिंग है मेरे पास उसको करने की। बाबा ने जो सुंदर तैयारी का समय दिया है, इस समय उसका पूरा फायदा उठा लेंगे सभी। बहुत सुंदर तैयारी का समय है। मैं आप सभी को कुछ प्रैक्टिसेज कहना चाहता हूं, आप सब चलते फिरते भी उनको कर सकते हैं। इससे हमारा मन शांत रहेगा, हम बहुत पावरफुल भी रहेंगे। ये जो कुछ संसार में इस समय हो रहा है उससे अपने को सेफ रखने के लिए हम अपने चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बनाया करें, रोज बनाया करें, अपने चारों ओर भी और आप लोगों को सिखाएंगे भी, अपने परिवारों को भी इस आभा मंडल के घेरे में ले सकते हैं, पूरे घर को ले सकते हैं। क्योंकि ये भटकती आत्माओं के प्रकोप जहां तहां बढ़ रहे हैं। मेरे पास शांतिवन वाले भी कॉन्टेक्ट करते हैं कई, ये हो रहा है हमें आजकल। मधुवन वाले भी करते हैं, यहाँ ये हो रहा है हमें आजकल। मैं समझता हूँ ये सब जो कोरोना वाले है ना, ये अब तूफान कर रहे हैं दुनिया में, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं। तो अपने चारों ओर पावरफुल ओरा, कहते हैं इंग्लिश में, आभा मंडल बनाएंगे रोज एक दो तीन बार चलते फिरते ही। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। सवेरे 7 बार अभ्यास कर लो, चलते फिरते 3 बार कर लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर बन गया है शक्तियों का घेरा। मैं इसके बीच में हूं। सवेरे योग के समय अपने को इस आभा मंडल के बीच में बैठा कर योग करें, देखो कितना मजा आएगा, फर्स्ट क्लास एकाग्रता हो जाएगी, पावरफुल फीलिंग्स होने लगेगी, हमारे ये चारों ओर आभा मंडल है, इसमें कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकेगी। आप में से जिसने रामायण की सीरियल देखी हो, मुझे उसका एक सीन बहुत अच्छा लगता था। पिछली बार तो हम लोग देख नहीं पाए थे, इस बार मैंने कुछ सीरियल देखे। मेघनाथ पहाड़ियों में जाकर यज्ञ करने लगा है, दिग्विजय यज्ञ, ताकि हमारी विजय हो जाए। राम को पता चला, राम ने लक्ष्मण को भेज दिया है, हनुमान सब जा गए, इसके यज्ञ को बीच में भंग करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने भंग किया, मेघनाथ युद्ध के लिए खड़ा हो गया। अब उसके पास तीन पावरफुल अस्त्र थे, सामने लक्ष्मण है, उधर मेघनाथ है। पहला उसने छोड़ दिया ब्रह्म अस्त्र, और उसने क्या देखा, लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल आभा मंडल क्रिएट हो गया, और ये ब्रह्म अस्त्र उसको नमस्कार करके लोप हो गया। मेघनाथ देखता ही रह गया, ये क्या हो गया। दूसरा पावरफुल अस्त्र था नारायण अस्त्र, तीनों देवताओं के अस्त्र दिखाए हैं शास्त्रों में। उसने नारायण अस्त्र छोड़ दिया, नारायण अस्त्र ने भी उसके तीन चक्कर लगाए प्रभा मंडल के, और नमस्कार करके लोप हो गया। अब मेघनाथ परेशान हो गया, ये तो गजब हो रहा है। तीसरा था शंकर का पाशुपात अस्त्र, वो छोड़ दिया, इनसे कोई नहीं बच सकता था, वो भी चक्कर लगा के नमस्कार करके लोप हो गया। मेघनाथ ने तब रावण को कहा था, इन्हें हम जीत नहीं पाएंगे, ये देव पुरुष आए हैं। हमारे चारों ओर भी बहुत पावरफुल आभा मंडल हम बनाए, चाहे माया, चाहे वायरस, चाहे भटकती आत्माएं, कोई इसमें नहीं आ सकती, सदा सेफ रहेंगे हम। आप सिखाएंगे, मैं आपको इसलिए भी कहा, किसी गृहस्थी का ऐसा फोन आए आपके पास कि डर लग रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो बताएं, वो अपने घर को भी चारों ओर इस आभा मंडल में ले सकते हैं। और इसी के साथ दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं कहानी सुनाकर ही आपको कह रहा हूं, आपको याद रहेगा और मजा आएगा। विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षस लोग नष्ट कर रहे थे, राम को ले गया वो दशरथ से। राम ने देखा कि राक्षस आते हैं, गंदगी डाल जाते हैं, तो यज्ञ के ऊपर बाणों का छत्र बना दिया। अब मारीच और सुहाऊ आए, गंद डाला तो ऊपर रह गया, कुछ नहीं कर पाए, तो यज्ञ पूर्ण हो गया। हम भी सर्वशक्तिवान को अपनी छत्र छाया देखा करें। तो ये सुंदर सीन आप रोज सवेरे योग में बना लें, मेरे चारों ओर आभा मंडल है मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके, और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, इसमें बैठ जाएं, आभा मंडल के बीच में छत्र छाया के नीचे। योग बहुत पावरफुल हो जाएगा, हम सेफ रहेंगे सदा ही। आप सबने सुना ही होगा बाबा ये बात, अपने संदेशों में भी बहुत बार कही थी, छत्र छाया बनाओ। मैं एक सुंदर मैसेज आपको सुना रहा हूं, और मेरा ये अपने जीवन का बहुत सुंदर अनुभव था, वो भी थोड़ा सा कई साल पहले की बात है। विदेशी जब बहुत आते थे और मार्च का मास विदेशियों का होता था, एंड का पता है आप सबको, तो विदेशियों का ग्रुप आया और जा रहे थे, तो मधुबन में मोहिनी बहन थी न्यूयॉर्क वाली, उसने भोग लगाया, बाबा का सबके लिए एक सुंदर संदेश आया, बड़ा फायदा होगा आपको। बाबा ने कहा, छत्र दिखाया ऊपर और कहा, बाबा को ऐसे छत्र छाया बनाकर रखना पूरे साल। और एक सुंदर सी लाइन बोल दी, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना, बस इतना ही संदेश था। बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना, बहुत ही चिंतनीय सब्जेक्ट है ये। भगवान हमारा है और वो खुद कह रहा है मुझे यूज कर लो। अब ये हर एक के अपने विवेक पर निर्भर है कि हम कितना उस इस बात को समझते हैं और कितना बाबा को यूज करते हैं। बाबा ने कहा एक वर्ष ये सब अभ्यास करना। मैंने ये बहुत किया था, मुझे बहुत आनंद आया था ये सुन के, बाबा को यूज करना। मैं सोचता था भगवान स्वयं कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे यूज करो। मैंने किया। अगले साल फिर वही समय मार्च, और फिर भोग लगाया मोहिनी बहन ने। संदेश था, देखो अब ध्यान से सुन लेना, पिछले साल बाप ने बच्चों को काम दिया था, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना। लेकिन बाप बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आए, और देखता था कि ये हजार भुजा वाले के पास ना आकर दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचता था इनके लिए क्या करें। समझ गए ना राज, कहीं भी जरूरत पड़ जाए, रोज पड़ती है हमें, मैं तो रोज करता हूं आजकल ये, बाबा को यूज करो, उसको बुलाओ, उससे बताओ अपनी बात, उसके मदद के लिए कहो, अधिकार से कहो, करेगा, उसने वायदा कर लिया मैं तुम्हारे लिए हूं। हम उसे छोड़कर मनुष्यों के पास जाएंगे मदद के लिए तो कष्ट होगा, कोई मदद करेगा कोई नहीं करेगा, किसी का स्वार्थ होगा मदद करने के बाद, कोई मदद करने के बाद हमसे कुछ चाहेगा। तो बहुत सुंदर बात है, मुझे बहुत मजा आया था इसमें। हम सभी बाबा को यूज करें, बुलाया करें, उसकी मदद लें, अपने चिंतन को सभी बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। रमेश भाई कह रहे थे शुरू के कुछ अनुभव सुना दो। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो यज्ञ में बहुत ज्यादा वैराग्य हुआ था, और वो वैराग्य कईयों के लिए लिफ्ट बन गया था, मेरे लिए भी लिफ्ट बना था, हालांकि मैं छोटा था, लेकिन टोटल यज्ञ में वैराग्य का माहौल ही बन गया था। यज्ञ बहुत साधारण था, हम सबको कई कई सेवाएं होती थी, ड्यूटी नहीं होती थी कि यही ड्यूटी है, दो घंटे यहाँ, दो घंटे यहाँ, दो घंटे यहाँ, दो घंटे यहाँ, सभी थोड़े से तो हम थे, तो रात को नाइट ड्यूटी भी दो दो घंटे सबकी होती थी, यानी विश्वतन दादा भी दो घंटे नाइट ड्यूटी देते थे, कभी कभी कोई नहीं होता था तो आनंद किशोर दादा भी देते थे दो दो घंटे नाइट को जाकर। हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य था रात का एकांत का समय। यज्ञ में कैसा था देखो, हम छोटे थे तो डर भी लगता था रात को, क्यों डर लगता था, ना तो कोई बड़ा गेट था जिसको बंद कर दो, इतने इतने गेट, कोई भी कूद के आए, चारों ओर की दीवार दो दो फुट थी बस, बैक गेट तो था ही नहीं, ऐसे ही दो लकड़ी खड़ी करके ऐसे ही किया हुआ था बस, सड़कें भी नहीं थी, बल्ब नहीं जलते थे, बिजली महंगी थी, सारे यज्ञ में चार बल्ब जलते थे और हम छोटे छोटे पहरा देने वाले डरते डरते पहरा देते थे। वो तो अब सोचते हैं कि पहरा देने वाला ही डर रहा हो तो क्या करेगा, पर कोई आता नहीं था क्योंकि अब वो एक ऐसी जगह थी, अब भी है, जहां चोरी नहीं होती थी। कभी किसी का कोई सामान यज्ञ से उठा नहीं था। तो बहुत अच्छा वैराग्य हुआ, सेवाएं भी बहुत अच्छी अच्छी हम लोगों को करनी पड़ती थी। जब राजू आया तो राजू को भी वही ड्यूटी दी गई थी आते ही, क्योंकि वो तो बहुत छोटा था, दसवीं करके ही आ गया था। पहला काम होता था सवेरे उठकर जो भी पार्टियां आई हैं उन सबको गर्म पानी पहुंचाना। लोहे की बाल्टी होती थी बड़ी बड़ी, ये प्लास्टिक युग नहीं था तब। तो मेरी ड्यूटी थी 16 बाल्टी पहुंचाना सवेरे सवेरे, और राजू की भी इतनी थी, और हम 7-8 भाई होंगे पानी पहुंचाने वाले। तो जितनी पार्टी आई सबकी, सबको गर्म पानी बाथरूम में पहुंचाना, क्योंकि गर्म पानी एक ही जगह होता था यज्ञ में, और वहां से ही सबको देना होता। बड़ा मजा आता था हमको, बहुत मजा आता था। उन सेवाओं को हमने बहुत एंजॉय किया। लकड़ियों पे भोजन बनाते थे, लकड़ियों के ऊपर कोई छत नहीं थी, जो डालने की वो मोटी सी चादर होती है ना, क्या कहते हैं, वो भी नहीं थी। बारिश में भीग रही हैं लकड़ियां और हमें उन्हें जलानी है, और वो सदाई भीग रही हैं, कोई एक दिन नहीं, वो मासों मास भीग रही हैं, और हमें उनको जलाना है, उठा के भी लाना वहां से, आज जलाना भी। लेकिन बहुत आनंद लिया उन सब चीजों का। मैं ये बात आपको इसलिए भी सुनाई, हम अपनी सेवाओं से बाबा को यदि राजी कर लें, भगवान राजी हो जाए, क्या कर देगा सोच लो। मेरे पास तो ये सबसे वंडरफुल अनुभव है जीवन का, ये 69 का, ये शुरू का, कि किसी को योगी भी बनना है तो तब तक नहीं बन सकते जब तक प्रभु कृपा ना हो। बिल्कुल सच्ची बात सुना देता हूं, थोड़ा सा अनुभव है तो मेरा प्राइवेट अनुभव। हम लोग म्यूजियम में थे, म्यूजियम बना था आबू वाला, उसी की सेवा में थे। निर्भय भाई बॉम्बे में रहते थे, वो वहां से आए थे, और हम लोगों ने उसको बनाया, 2 मास में ही बन गया था, और फिर पूरा हो गया। अव्यक्त बाप दादा ओपनिंग करने आए म्यूजियम में ही, जो पहला हॉल है देखा होगा आप सबने, पहला बड़ा रूम, उसमें ही अव्यक्त बाबा आए। तो आबू में म्यूजियम बनना माना एक बहुत बड़ी चीज। सारे महारथी पहुंचे, सारी बड़ी बड़ी दादियां, जगदीश भाई, रमेश भाई, सब पहुंच गए। तो म्यूजियम बन गया था, वहीं से मुझे दीदी ने कहा किचन में माताएं हैं, उनको मदद करने जाओगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं जाएंगे, म्यूजियम तो पूरा हो गया। मेरी ड्यूटी 2-3 दिन पहले ही किचन में गई सेवा करने, जैसे माताओं को मदद करने। अव्यक्त बाप दादा आए म्यूजियम के हॉल में, सब बैठे थे। बाबा से उन दिनों दादियां एक रूढ़िहान बहुत करती थी कि बाबा आप चले गए, आपने तो कहा था साथ लेकर जाएंगे, हमें छोड़ गए, ये वो। तभी बाबा अव्यक्त हुए थे, 2-3 मास हुए थे, तो बड़े प्यार से दादियां कहा करती थी। बाबा ने उस दिन थोड़ा फिर ऑफिशियली मुरली चली, पूछा अच्छा साथ चलना चाहोगे? साथ चलने के लिए 8 घंटा योग तो करना पड़ेगा, तो बताओ किस किस का योग 8 घंटे है। अब सारी दादियां थी, कम से कम 15 बड़ी दादियां होंगी, उनकी तरफ देखा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर भाइयों की तरफ देखा, सारे बड़े बड़े थे, हम लोग तो थोड़े से पीछे बैठे थे, पीछे भी कितना, 5-7 फुट पीछे बस बाबा से, किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाबा ने दूसरी बात कही, अच्छा जिसका उन दिनों योग माना पावरफुल योग परम धाम में, बाकी कोई योग नहीं। फिर बाबा ने थोड़ा रिलैक्स किया, 3 चीजें जोड़ी, बीज रूप स्थिति, बाबा से रूरिहान और ज्ञान का मनन। जिनका 8 घंटे हो वो हाथ उठाओ। दादियों की ओर देखा, बहनों की ओर, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर भाइयों की ओर देखा तो मेरी तो अव्यक्त होते ही बाबा के लगन तेज चल रही थी, लेकिन योग उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन लगन इतनी थी कि उसके अलावा कुछ और नहीं था। तो मुझे ये अनुभव है उस दिन का, 4 ने हाथ उठाया, उसमें एक जगदीश भाई भी थे, गोपाल भाई भी थे, सेवा में आए हुए थे, ये मिलिट्री में थे। और मेरा हाथ जैसे, अब हम छोटे थे ना, डरते थे हाथ उठाना, कोई तो उठा नहीं रहा उधर से, अब मैं उठा दूं कहीं डांट न पड़े मेरे ऊपर, डर होता है ना छोटों को। पता नहीं किसने जैसे मुझे फोर्सफुल्ली हाथ उठवा दिया हो। 4 ने हाथ उठाए, कोई और था बाहर का, हाथ उठाया तो बाबा ने बहुत सुंदर दृष्टि दी और कहा 4 आगे आओ। थे तो वहीं जगदीश भाई आगे थे, तो जगदीश भाई का हमसे बहुत प्यार था, हम दिल्ली से आए थे, तो वो पीछे हो गए, मुझे सबसे आगे कर दिया, तुम आगे चलो। बाबा ने दृष्टि दी फिर से, और 4 के लिए एक महावाक्य उच्चारण किया। जिन्होंने हाथ उठाया है बाबा उनका 1 हफ्ते का चार्ट देखेंगे। और दूसरी लाइन बोली, पुरुषार्थ प्रतिज्ञा करके करो। बस दृष्टि दी बहुत अच्छी तरह, प्यार दिया। इसका फोन आ गया भाई। दृष्टि दी बहुत अच्छी तरह से, और मुझे ऐसा हुआ दृष्टि देते ही, उन दिनों में वरदान शब्द नहीं होता था यूज, कि जैसे वरदान मिला। मैं और भोपाल भाई फ्रेंड थे दोनों, क्योंकि ये हमारे दोनों लौकिक में एक इस जगह के ही हैं, तो हम दोनों ने रेस की अगले दिन। उसने भी हाथ उठाया था और मैंने भी उठाया था। आज हम रेस करेंगे कौन ज्यादा योग करे, जो मुरलियों में आता है ना, रेस करो और घूमने जाओ। तो अब मुझे चार्ट लिखने का शौक था, मैंने हर घंटे अपना चार्ट लिखा और एक प्रतिज्ञा की कि आज रात तक मैं 6 घंटे योग पूरा करूंगा अपना, नहीं करूंगा तो जाग कर करूंगा। बाबा ने कहा था ना, प्रतिज्ञा करके करो। मेरा 6 घंटे योग रात को 8 बजे तक ही हो गया। मैं किचन में था, वहीं कामकाज करते कुछ बैठ के बाबा कमरे में मैंने किया। हम मिले दोनों रात को 9 बजे, भोपाल भाई, मैंने कहा क्या कैसा है, कि नहीं आपका ही अच्छा हुआ है, मेरा नहीं हुआ, बहुत लगन हो गई, 6 घंटे कभी हुआ नहीं था, उमंग बढ़ गया। अगले दिन संकल्प किया आज 7 घंटे करेंगे, लगन बढ़ गई, वही प्रतिज्ञा, 7 हो गया। तीसरा दिन 8 का और 8 हो गया। पहली बार जिंदगी में, 4-5 साल हो गए थे ज्ञान में, 8 घंटे का सुख क्या होता है वो मुझे अब तक याद रहता है। मजा आ गया, तो मुझे ये क्लियर फीलिंग है कि बाबा की दृष्टि, उसने ये काम कराया। अपने से नहीं होता, हम बाबा को राजी कर दें, बहुत राजी कर लें बाबा को अपनी निष्काम सेवाओं से। यज्ञ में जो हम कर रहे हैं, यज्ञ से हमारा बहुत प्यार है, सब कुछ तेरा, सेवाएं भी अर्पित करते चलें। रोज शाम को सबको आदत बना लेनी, मैंने सीख लिया ये, मैं बहुत साल से करता हूँ सेवा की, बट्टी कराई, क्लास कराई, लोग बड़ी महिमा करते हैं, सब अर्पित, महिमा भी तुझको अर्पित, बड़ा आनंद रहता है। एक बात मुझे याद आ गई, मैं सुनाऊं, उन दिनों हम बाबा से बहुत मिलते थे तो मुझे बुखार बहुत होता था, पानी ऊपर का भारी, और हम लोग कच्चा ही पीते थे तो बुखार होता था, दादी भी सोचते थे इसको बार बार बुखार होता है, इलाज तो हमारे यहाँ यज्ञ में कोई था नहीं, तो डॉक्टर ही नहीं था कोई। अब तो आप लोग बड़ी मेहनत करते हो ना, कमर दर्द हुआ तो चल रहा है, बुखार हुआ तो बस किचन से घोल घाल के कुछ दिया, बोली दादी ने ठीक हुआ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा हम लोगों से काफी मिलते थे, मैंने कहा बाबा बुखार बहुत होता है। बाबा ने कुछ दो चार अच्छी बातें कही, शरीर को टाइम दो, जो कुछ इसको चाहिए वो दो, कराओ दिखाओ किसको। अब यज्ञ में इतना पैसा नहीं था कि हम पालनपुर भी जाएं इलाज कराने के लिए, कोई गाड़ी नहीं। बाबा ने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही, ये बात तो 45 साल पहले की है, पर मुझे तो ये जीवन भर काम आई, आप सबको भी इसलिए सुना रहा हूं कि सबसे जुड़ी हुई है ये बात। बाबा ने कहा, अपनी सेवाओं से अपने बड़ों को निश्चिंत रखना बहुत बड़ी सेवा है। मुझे तो पक्का हो गया था। तो हम सभी इस मार्ग पर चलते हुए, मैं वही बात फिर रिपीट कर रहा हूं, संसार के काम आ जाएं, अपने काम सब आते हैं, अपनों के काम सब आते हैं, हम संसार के काम आ जाएं। एक प्रैक्टिस और आपके सामने रख रहा हूं, मुझे बहुत प्रिय लगी है, सुनी तो बहुत बार है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी थी, पर अब मैंने उस पर ज्यादा फोकस कर दिया है। एक मुरली में पढ़ा अभी अभी, तब से ज्यादा फोकस किया। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करना, तो सभी बहुत अच्छा करेंगे, अपने अंतवाहक शरीर को क्रिएट करेंगे, अपने सामने पिक्चर बनाएंगे, पिक्चराइज करें आप उसे, मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने खड़ा, जैसा सुंदर आप बना सकें, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं या वाइट है, वाइट लाइट वाइट फैल रही है, शरीर है केवल, आत्मा नहीं, केवल अंतवाहक शरीर। मैं आत्मा यहां से निकली, उसमें बैठ गई, इशारा किया, उड़ गए, अलग अलग जगह पहुंचे, कहीं वाइब्रेशंस दें, कहीं संदेश दें, कहीं सुंदर संकल्प दें, कहीं शांति दें, बहुत ही मजा आएगा। 15 मिनट भी रोज कर लेंगे, आत्मा आनंदित हो जाएगी। संदेश भी हमें देना है, देखो कैसे देना होता है संदेश। संकल्प करेंगे, ऊपर पहुंचे हम, ऊपर पहुंच गए आकाश में, नीचे हमारे संसार है, या कोई बड़ा सिटी है, या कोई बड़ा देश है, और हमने इमर्ज किया, सब आत्माएं हैं वहां, और बात करें आत्माओं से, हे देवकुल की आत्माओं, पहले देवकुल की आत्माओं से बात करेंगे, तुम्हारा परमपिता तुमसे मिलने आ गया है, तुम युगों से उसे ढूंढती थी, अब वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, वो तुम्हें पुनः मनुष्य देवता बनाने के लिए आ गया है, आ जाओ, वो सत्य ज्ञान दे रहा है, तुम्हारी जन्म जन्म की सत्य की खोज समाप्त हो जाएगी, आ जाओ उसके पास। ये पहुंचने लगेगा लोगों को, और उन्हें ऐसा लगेगा कोई फरिश्ते बुला रहे हैं। मनुष्य की बात लोग अवॉइड कर सकते हैं, उस आवाज को इग्नोर नहीं कर पाएगा कोई भी। बहुत ये सुंदर काम होगा, स्वयं की स्थिति बहुत आनंदित होगी, कहीं जाकर शांति के वाइब्रेशंस। आजकल निर्भयता की वाइब्रेशंस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये वाइब्रेशंस। कल मैंने क्लास में इधर एक अनुभव सुनाया था, आपकी तो भट्टी थी ना, आपको सुना देता हूँ छोटा सा। मैंने जैसे ये बताया कि अहमदाबाद के ऊपर जाकर स्थित हो जाओ, अहमदाबाद में ज्यादा है ना कोरोना का, मुझे याद आया अभी दो चार दिन पहले का अहमदाबाद की माता का एक सुंदर अनुभव, सुन लें आप दो मिनट में। कोरोना उसको हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती, इतनी ठंड लगने लगी उसको कि वो बेड से भी गिर जाएगी, संभल नहीं पा रही है, कांप रहा शरीर। उसने पकड़ ली खाट को बहुत सख्ती से और जोर जोर से बोलने लगी, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, जोर से बोल रही है। लोग देखने लगे और उसको क्या दिखने लगा, बाप दादा आ गए। बाप दादा आ गए तो बाबा से लाल किरणें निकल रही हैं और ये लाल किरणें उसके लिए जैसे अग्नि बन गई, उसकी ठंड तो बस बहुत जल्दी समाप्त हो गई, उसको पता ही नहीं चला कहां गई ठंड। और इतने में उसने देखा, अब वो बाबा को देखने में मगन हो गई, एक नर्स भागी भागी आई है जो कहीं नहीं जाती, बुलाने से भी नहीं जाती, उसने बताया कठोर सी थोड़ी, कहा गर्म पानी और उसमें नींबू मिला के लाई, लो जल्दी पी लो, ठंड लग रही है ना। उसने पिलाया, ठीक हो गई। दो दिन के बाद कोरोना वोरोना सब भाग गया, डिस्चार्ज मिल गया, घर आ गई। ये बाबा का कमाल, बाबा इस तरह बहुत सारे काम कर रहा है और यही काम बाबा हमारे द्वारा कराएगा। जिस दिन वो साक्षात्कार की चाबी यूज शुरू कर देगा ना, करना उसके हाथ में है, वो तो और किसी के हाथ में है ही नहीं, उस दिन बहुत खेल सुंदर हो जाएगा। और सिद्धांत यही काम करेगा, जो जिस स्मृति में लंबा समय रहे हैं उनका वही स्वरूप दिखाई देगा। समझ लें सभी इस बात को, आपने लंबा समय स्मृति रखी, बाबा मेरे साथ है, देखने वालों को भगवान आपके साथ दिखाई देने लगेगा। चोर आगे मारने के लिए दिखेगा भगवान है इनके साथ तो भाग जाएंगे। आपने अभ्यास किया सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया है, वही दिखने लगेगा लोगों को। जिसने बहुत अभ्यास किया मैं आत्मा हूं तेजस्वी, उसके मस्तक में चमकती हुई आत्मा सबको दिखने लगेंगी। याद हो आपको बाबा के ये सब मुरलियां हैं, मस्तक में इतनी तेज लाइट दिखेगी कि सामने आने वालों के ऊपर इतनी ज्यादा पड़ेगी कि वो तुम्हारे देह को देख ही नहीं पाएंगे, दोनों नैन बल्ब बन जाएंगे पावरफुल। सबने सुनी है ये मुरलियां। तो जिसने जिस स्मृति का बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा वही स्वरूप साक्षात्कार के रूप में संसार देखेगा। तो आने वाला समय 9-10 साल वंडरफुल हैं। दो बातें याद दिला दूं आपको बाबा की, और आप बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बाबा ने कह दिया साकार मुरली में ही आई है, एंड से पहले एक बार इस धरती पर स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन हो जाएगा, हिंदी में रूहानी क्रांति हो जाएगी। क्रांति जैसे आप टीवी खोलो तो क्या दिखाई देता है, कोरोना, उसके अलावा कोई न्यूज बचा ही नहीं, कोरोना क्रांति। ऐसी क्रांति आएगी कि ज्ञान योग ब्रह्मा कुमारियां इष्ट देव बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा यही आया करेंगे, योग ऐसे लगाओ इससे लगाओ, क्रांति हो जाएगी। और एंड में क्रांति हो जाएगी प्योरिटी की, पवित्रता की क्रांति। क्यों, जैसे अभी काम वासना की क्रांति है, एंड आएगा चक्र सतयुग में जाना है तो सभी के प्योर संस्कार जागृत हो जाएंगे। सब आत्माओं को घर जाना है, पवित्र बन के ही जाएंगे। हर धर्म की आत्मा पवित्र बनने की इच्छुक हो जाएगी। तो ये बड़े काम होने जा रहे हैं। आप सभी अपने से बातें करेंगे। आने वाले समय में मुझे हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं बनना है, हीरो पार्ट बजाने वाले, ताकि हम संसार के दुख हर सकें। कई काम हमारे सामने होंगे, दुख हरने का काम, विघ्न नष्ट करने का काम, मानसिक रोगों में राहत देने का काम। मानसिक रोगों की कोई दवाई नहीं होती, जैसे कोरोना की वैक्सीन नहीं निकली, मानसिक रोगों की भी कोई वैक्सीन नहीं, क्योंकि रोग है मन में, आत्मा का रोग है। शरीर को थोड़ा बहुत ठीक करेंगे फिर चालू हो जाएगा। तो मुझे हीरो पार्ट बजाना है, ऐसे योगी बन जाएं सभी बाबा के बच्चे। जहां खड़े हों वो स्थान तीर्थ बन जाए, हमारा जीवन चलता फिरता तीर्थ हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग शांतिवन में ही आने वाले हैं जय जयकार के समय, फिर ऊपर पैदल जाएंगे सब। गाड़ियां तो बंद करनी पड़ेंगी, रोड पैदल वालों से ही भर के चलेंगे। घूम फिर के शाम को नीचे आके ब्रह्मा भोजन खा के विदाई लेंगे लोग। बाबा ने बोला हुआ एक एक दिन की यात्रा होगी। तो हम अपने जीवन को ऐसा महान तीर्थ बनाए और जिस पे दृष्टि पड़े वो कुछ लेकर जाए, जिसके पास खड़े होकर दो बोल बोल दें वो तृप्त होकर जाए। हम अपने पुण्यों का भी दान दूसरों को कर सकें, ये महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम उस सब के लिए तैयार हो जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने भाई बहने भट्टी कर रहे हैं, योग की ज्वाला जलेगी। बाबा के सब तो भारी होते हैं ना, यज्ञ से योग की अग्नि जलेगी, सारा संसार जल के भस्म हो जाएगा। लोग सुने तो कहेंगे कौन इनका भगवान, खतरनाक, क्या बोलता है। तो एक योग की अग्नि हमारे भी कर्मों को जलाएगी लेकिन पापियों को भी नष्ट करेगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब अच्छी तपस्या करते रहें। ओम शांति। फरिश्ता बनकर बैठेंगे, चारों ओर शक्तियों का प्रभा मंडल और सर्वशक्तिवान छत्र छाया।